आप सुन रहे हैं सुनो किताब। नमस्कार बच्चों, मैं हूँ दिव्यांगना द्विवेदी और आज हम सिविक्स के 9th चैप्टर की 2nd क्लास करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्व और समानता। संविधान सरकार को निर्देशित करता है कि वह न्याय और अवसर की समानता स्थापित करने के लिए कार्य करे। मतलब हमारा जो संविधान है उसमें ये लिखा हुआ है कि हमें हर किसी को अगर इक्वालिटी देनी है, अगर समानता देनी है, तो हमें आर्थिक न्याय और अवसर मतलब अपॉर्चुनिटीज देने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। द वन ऑफ द एग्जाम्पल इज रिजर्वेशंस। ठीक है, जितने भी पुराने पिछड़े वर्ग हैं उन सबको रिजर्वेशंस मिले हैं सो दैट दे कैन अप फ्रंट इन द सोसाइटी और वो आकर हर चीज में भाग ले सकें। वह व्यक्तियों और समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करें। जो ग्रुप्स हैं या जो सुविधाएं सबको मिलती हैं ग्रुप में और हर चीज में, तो वो सारी सुविधाएं उन लोगों को भी मिलनी चाहिए जो कि पिछड़े वर्ग के हैं। क्योंकि होता क्या था पहले कि जो अच्छी जाति के और ऊंची जाति के लोग होते थे उनको हमेशा प्रिविलेज मिलता आया है एंड इट इज़ हैपनिंग फ्रॉम वेरी बिगनिंग ऑफ द टाइम, बहुत पहले से होता आ रहा है ऐसा। लेकिन एक टाइम के बाद लोगों को समझ में आने लग गया, कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ ऐसे लोग थे जिनको समझ में आने लग गया कि ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे गांधी जी, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो नीची जाति के जो अनटचेबल्स जिनको कहा जाता था उनको गांधी जी ने उनका नाम हरिजन रखा था एंड दैट मीन्स पीपल ऑफ गॉड। तो ये बोलना चाहते हैं कि सारे व्यक्तियों को हर चीज़ में, प्रतिष्ठा में, सुविधाओं में, अपॉर्चुनिटीज मतलब अवसर में, हर चीज़ में समानता देनी चाहिए। उसके बाद इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कानूनी प्रावधानों के साथ साथ ही सरकार अनेक योजनाएं व कार्यक्रम चला रही है। देखिए, ये सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे अलग अलग स्कीम सरकार चला रही है, आप लोग को पता ही होगा। अब जैसे गाँव में पहले के टाइम पर और आज के टाइम पर भी काफ़ी गांवों में चूल्हे में लकड़ी जलाकर खाना बनाती थी, लेकिन अब सरकार की जो योजना थी वो घर घर में गैस वाली योजना जो सबको मिली है ना, उससे काफ़ी हेल्प हुई लोगों को। तो ऐसे सरकार अलग अलग स्कीम, अलग अलग कदम उठा रही है लोगों की हेल्प करने के लिए, जो पिछड़े वर्ग के हैं, जो गरीब हैं। ठीक है, अब इसमें एक्टिविटी है मतलब गतिविधि है, इसे मैं पढ़ती हूँ। आपके क्षेत्र में आयोजित होने वाले मेले किस प्रकार सामाजिक समानता एवं समरसता को बढ़ाते हैं, शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। ये डिस्कशन राउंड है, इंडिविजुअली खुद ही से एक बार प्रैक्टिस करके इसका डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू आप रखोगे ना, तो अगर पेपर में क्वेश्चन भी अलग से आता है देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, यू विल बी एबल टू राइट एन आंसर फॉर इट। ओके, देन कम्स आरक्षण व समानता। मतलब आरक्षण भी है और उसके वजह से समानता कैसे आई, हम ये पढ़ेंगे। आरक्षण में अब आप बच्चे बोलेंगे जिन बच्चों को कि मतलब जिनको आरक्षण मिला है, जो SC ST OBC हैं, तो उनको तो आरक्षण मिल गया, वो आगे निकल गए, पर हम जनरल वालों का क्या। तो लेट मी टेल यू गाइस कि आपको शायद पता हो या नहीं पता हो, आई डोंट नो, कि अब रूल आ गया है कि 10% का रिजर्वेशन जनरल वालों के लिए भी है, लेकिन उसमें कंडीशन है कि आपके नाम पर कोई जमीन नहीं होनी चाहिए और आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, 1 एकड़ से ज्यादा की आपकी जमीन नहीं होनी चाहिए, तो आपको वो रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो अब ये आरक्षण जनरल वालों के लिए भी आ गया है। अब पढ़ते हैं आगे। अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए कुछ लोगों को विशेष अवसर देना जरूरी होता है। आरक्षण के पीछे उद्देश्य यह है कि समाज के वंचित व पिछड़े वर्गों को विकास के विशेष अवसर देकर उनके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास के द्वारा उन्हें समाज की मुख्य धारा में बराबरी की स्थिति में लाना। मतलब कि हमें अगर आरक्षण में, आरक्षण किनके लिए दिया गया है, पिछड़े वर्ग के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, तो हमारा मोटिव ये है कि वो हमेशा निचले स्तर पर ना रहें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कोई बच्चा जो बहुत गरीब हो, SC ST OBC कास्ट का हो, है ना, और वो बहुत पढ़ने में अच्छा है लेकिन उसके माँ बाप के पास पैसे नहीं है उसे पढ़ाने के लिए या आगे भेजने के लिए। तो सरकार ऐसे लोगों के लिए रिजर्वेशन रखती है। जब संविधान बना था तब ऐसे लोगों के लिए रिजर्वेशन हुआ था कि जो पिछड़े वर्ग के हैं, जो गरीब हैं, जो नहीं कर सकते आगे अपनी जिंदगी में, अच्छा नहीं बढ़ सकते बिना पैसों के, उनके लिए ये रिजर्वेशन रखा गया था। तो इसीलिए आरक्षण रखा गया है। सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं में महिला, वंचित वर्ग, गरीब और अन्यथा सक्षम लोगों, विशेष योग्य जनों को प्राथमिकता देती है। संसद और विधानसभाओं में कुछ पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। सरकार अपनी जितनी भी योजनाएं बनाती है, कोई भी गवर्नमेंट अगर जब इलेक्शन मैनिफेस्टो, जब भी चुनाव होते हैं तो आपने देखा होगा एक पत्र आता है जिसमें वो लिखा रहता है कि हमारी सरकार अगर आएगी तो, प्रोमिसेस लिखे रहते हैं उसमें कि हमारी सरकार अगर आएगी तो ये काम करेगी, वो काम करेगी, हर एक काम उसमें लिखा रहता है। तो उसमें ज्यादातर जो फोकस होता है वो वुमेन एम्पावरमेंट पर होता है, SC ST OBC मतलब पिछड़े वर्ग पर और गरीबों पर होता है। तो इससे क्या होता है कि जो वोटर, अब सरकार करती क्या है, सब यही योजनाएं बनाएंगी, सब इन्हीं चीजों तीनों टॉपिक पर बनाएंगी, पर असली में कौन काम करता है वो वोट देने के बाद पता चलता है। और मान लो अगर अपन ने गलत वोट दे दिया तो बस 5 साल उनके साथ रहना ही पड़ता है। और होता क्या है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारे कैंडिडेट हैं जिन्हें हम चूज करेंगे अपना मत देकर, अपना वोट देकर, तो वो जनरल कैटेगरी के हों या ऐसे हों, ऐसा जरूरी नहीं है। रिजर्वेशन इज इन एवरी फील्ड, यहाँ तक कि गवर्नमेंट जॉब पोजिशंस में भी, इलेक्शंस के लिए भी रिजर्वेशन हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, मेरी नानी सरपंच हैं और इस साल का इलेक्शन मुझे लगा कि वो फिर से लड़ेंगी, बट वो नहीं लड़ सकती क्योंकि इस बार का इलेक्शन जो है वो SC ST कास्ट के लिए, SC ST OBC कास्ट के लिए हो रहा है, तो उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती बिकॉज शी इज जनरल। तो ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है कि इसमें भी रिजर्वेशन होता है। जैसे संसद में कुछ पदों पर रिजर्वेशन होता है, कहीं कहीं जॉब प्रोफाइल में कुछ कुछ पदों पर रिजर्वेशन होता है, तो रिजर्वेशन हर जगह होता है। स्थानीय निकायों में तो महिलाओं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी पद आरक्षित किए गए हैं। इसी प्रकार सरकारी नौकरियां भी इन सभी वर्गों के लिए पद आरक्षित हैं। लोक कल्याण के लिए तथा समानता स्थापित करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि ये लाभ अति जरूरतमंद व्यक्तियों तक अवश्य पहुंचे। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब ये आरक्षण बनाया गया, जब आरक्षण किया गया, तो सच में उस टाइम पर जो ये पिछड़े वर्ग के लोग थे इनकी स्थिति बहुत खराब थी। तो आज के टाइम पर क्या होता है, लोग ना झूठे सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, झूठे डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं कि हम लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं और ये सारी चीजें करके, और वो एडवांटेज खुद ले लेते हैं। तो काफी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर इन सब के लिए रिजर्वेशन है, लेकिन सबसे आवश्यक बात यह है कि उन तक ये रिजर्वेशंस पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, और सरकार पूरी कोशिश करती है कि पहुंचे उन्हीं लोगों तक जो एक्चुअल में इसको डिजर्व करते हैं। भारत की 6 दशकों से अधिक की लोकतांत्रिक यात्रा का परिणाम यही है कि समाज के वे समूह जो दीर्घकाल से पिछड़े हुए थे, उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है। हर क्षेत्र में सभी वर्गों की सहभागिता बढ़ रही है। समतामूलक और न्यायप्रिय समाज की स्थापना के लिए अभी और प्रयासों की आवश्यकता है, जिसका अवसर लोकतंत्र ही प्रदान करेगा। भारत के 6 डिकेड्स से भी ज्यादा लोकतांत्रिक यात्रा का परिणाम है, मतलब कि इतना टाइम हो गया, 6 डिकेड से भी ज्यादा हो गया है हमारे देश में डेमोक्रेसी आए हुए, और जो उस टाइम पर पिछड़े वर्ग की जो स्थिति थी और आज के समय में जो स्थिति है, बहुत चेंजेस आए हैं उसमें, और आगे चलकर और उन्हें इन्हांस करेंगे और हम उन्हें बढ़ावा देंगे कि वो आगे बढ़े अपनी जिंदगी में, और वो अवसर भी हमें लोकतंत्र ही देगी, डेमोक्रेसी ही देगी। चलिए, तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है और अब हम आते हैं शब्दावली पर। पहला है जनहित याचिका, न्यायालय में जनता की भलाई से जुड़े हुए विषय का प्रार्थना पत्र। इसका मतलब मैंने आपको इंग्लिश में बताया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगर कोई वकील PIL फाइल करता है जो कि पब्लिक के हित के लिए है, उनके भले के लिए है, तो उसे जनहित याचिका बोलते हैं। अगर आप सब बच्चों में से किसी ने भी अगर जॉली LLB 2 मूवी देखी होगी तो आपको ध्यान होगा कि वो PIL फाइल करता है, ठीक है, उससे आपको ध्यान आ जाएगा। मैं आप लोग को ऐसे एग्जाम्पल्स इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको एग्जाम टाइम पर याद रहे कि जनहित याचिका थी क्या। जनहित मतलब जन के हित के लिए, जन मतलब लोग। सेकंड है समानता मूलक और न्यायप्रिय समाज, ऐसा समाज जिसके सभी वर्गों में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता स्थापित हो, ऐसा समाज जहाँ पर तीनों चीजों में, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोसाइटल, अगर इन तीनों चीजों में समानता है, उसका मतलब यही है, समता मूलक और न्यायप्रिय समाज। अब आ जाते हैं अभ्यास प्रश्न पर। सही विकल्प को चुनिए, लोकतंत्र बढ़ावा देता है असमानता को तो गलत होगा, समानता को यस, विशेष अधिकारों को नो, भेदभाव को नो। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज सेकेंड, दैट इज बी, समानता को. नाउ सेकेंड इज, मत देने का अधिकार है अमीर को नहीं, पुरुष को नहीं, पढ़े लिखे को नहीं, सभी वयस्क नागरिकों को. इसका ऑप्शन होगा द, सभी वयस्क नागरिकों को. मैंने आपको बताया था जरूरी नहीं है कि कोई इंसान पढ़ा लिखा हो तभी वो दे सकता है. आपको पता है हर एक पार्टी का, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल क्यों होता है? आपने सोचा है कभी कि सिंबल क्यों होता है हर एक, उसका लोगो क्यों होता है? बिना लोगो के सिर्फ नाम से भी तो पार्टी रख सकते थे, इतना सब कुछ. बीजेपी का कमल का फूल होता है, कांग्रेस का हाथ होता है, ऐसी किसी किसी पार्टी का हाथी होता है. ऐसे ऐसे सिंबल क्यों बनाते हैं लोग? इसलिए बनाते हैं क्योंकि सारे वोटर पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और काफी वोटर ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिंबल देख के पहचानते हैं कि ये उनकी पार्टी है जिन्हें उनको वोट करना है, इसलिए सिंबल बनाए जाते हैं. ठीक है, आप कभी किसी से पूछ कर देखना कि सिंबल क्यों बनाते हैं, और फिर देखना क्या आंसर मिलता है आपको. नाउ थर्ड इज, स्तंभ अ को स्तंभ ब से सुमेलित कीजिए, मैच द कॉलम. ठीक है, इसमें फर्स्ट है अपने प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र. थर्ड विल बी द राइट आंसर, दैट इज राजनीतिक लोकतंत्र. नाउ सेकेंड इज, व्यवसाय व उपभोग की स्वतंत्रता, ये आर्थिक लोकतंत्र है. ठीक है, मतलब व्यवसाय मतलब बिजनेस करने की, या कोई भी सामान अपने से खरीदने की अपने मन से, इसे आर्थिक, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, कि आप अपना पैसा, और इकोनॉमिक किससे रिलेटेड होता है? पैसा से रिलेटेड होता है. नाउ थर्ड इज, व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, इसे बोलते हैं सामाजिक लोकतंत्र. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, कानून के शासन से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है, ध्यान से सुनिएगा, हमारे संविधान में समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, सरकार व्यक्ति को कानून के सामने समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती. इसका अर्थ यह हुआ कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है. इसे कानून का शासन कहते हैं. कानून का शासन किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद है. कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है. देखिए, ये आंसर तो यहीं तक था. अब इसके आगे मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, थोड़ा सा आपका रिविजन करा देती हूँ. मैंने आपसे क्या बोला था कि हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें सबसे सुप्रीम पावर इज लॉ, जुडिशियरी. ठीक है, लॉ भी नहीं, जुडिशियरी मतलब जज की पावर. हम क्या करते हैं, छोटे छोटे कोर्ट्स, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, फिर स्टेट कोर्ट में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं. तो सबसे जो ऊंची न्यायपालिका है वो हमारे लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट है. और कानून के सामने मतलब जुडिशियरी के सामने कोई भी अलग नहीं है, चाहे वो कोई बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो. अब आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, सलमान खान को भी जेल हुई थी वो हिरन को मारने के चक्कर में, है ना, जो उन्होंने मारी थी. और आप सबको पता है ये कितनी पुरानी बात है, ये पुरानी बात है उस टाइम की जब हम साथ साथ हैं पिक्चर रिलीज हुई थी, तब की बात है. तब से लेके आज तक उनका केस चल रहा है और उनको जेल भी जाना पड़ता है क्योंकि उन्होंने रूल का मतलब नियम का उल्लंघन किया था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? अब इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ. भारत जैसे लोकतंत्रीय देश में सभी वयस्कों अर्थात 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नागरिकों को मत यानी कि वोट देने का अर्थात सरकार चुनने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सबके मत की कीमत समान होती है. इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है और यह लोकतंत्र का आवश्यक पहलू है. यहाँ तक था अपना आंसर. अब देखिए, ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया था और अभी मैंने आपको बताया कि इक्वालिटी अपने यहाँ हर चीज में है. तो जरूरी नहीं है कि आपकी एज देखकर या आपका कलर देखकर या आपका जाति देखकर बोलेंगे कि आप वोट मत दो. आप बिल्कुल वोट दे सकते हो अगर आप 18 साल या उससे ऊपर की उम्र के हो. और ये सारे आंसर मैं आपको आपकी बुक से ही बता रही हूँ, तो मैं अभी सारे आंसर बताने के बाद मैं एक बार पेज नंबर भी बता दूंगी ताकि आप लोग पूरा पूरा मार्क कर ले. मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा है इसमें. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंथ निरपेक्षता क्या है? भारत में कोई भी धर्म या पंथ राजकीय धर्म या पंथ के रूप में मान्य नहीं है क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है. यहाँ व्यक्ति अपने मत के अनुसार जीवन व्यापन करते हैं. प्रत्येक को अपने धर्म या पंथ के पालन की स्वतंत्रता है. सरकार सभी धर्मों या पंथों को बराबर का सम्मान देती है। यहां तक था आंसर। इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक बार दोबारा दे देती हूँ कि हमारा जो देश है वो सेक्युलर है, मतलब यहाँ कोई एक धर्म को प्रमोट नहीं किया जाता, यहाँ सभी धर्म का सम्मान किया जाता है, सेक्युलरिज्म है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को किस प्रकार स्पष्ट किया गया है। अब इसके लिए आप आ जाइए पेज नंबर 72 पर, उस पर एक हेडिंग है समानता एवं भारतीय संविधान, इसे मैं एक बार पढ़ देती हूँ। ये 7 पॉइंट्स आंसर हैं आपके, मैं आपके लिए एक बार रीड आउट कर देती हूँ। भारतीय संविधान सरकार को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना का निर्देश देता है। भारतीय संविधान ने समानता के अधिकार को इस प्रकार स्पष्ट किया है। अब हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार स्पष्ट किया है, क्या क्या समानता दी है हमें। सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। सेकेंड, दुकान, सिनेमा घर और होटल जैसे सार्वजनिक स्थल में किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता। थर्ड, सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नान घर, सड़क, खेल के मैदान और सार्वजनिक भवनों के इस्तेमाल से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। फोर्थ, सरकार में किसी भी पद पर नियुक्ति या नौकरी में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर किसी भी नागरिक को रोजगार के अयोग्य नहीं करार किया जा सकता या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। फिफ्थ, संविधान सामाजिक भेदभाव के एक रूप छुआछूत या अपरिष्यता को समाप्त करने के लिए सरकार को निर्देश देता है। सरकार ने किसी भी तरह के छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार करते हुए इसे एक दंडनीय अपराध करार किया है। सिक्स्थ, किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म आदि के आधार पर प्रवेश लेने से रोका नहीं जा सकता। सेवेंथ एंड द फाइनल पॉइंट, सरकार समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बना सकती और ना ही कोई ऐसा फैसला ले सकती है। कोई नागरिक या संस्था या फिर स्वयं सरकार भी यदि व्यक्ति के इस अधिकार का उल्लंघन करती है तो वह व्यक्ति अदालत के जरिए उसे रोक सकता है। जब मामला सामाजिक व सार्वजनिक हित का हो तो ऐसे मामलों को लेकर कोई भी व्यक्ति जनहित याचिका के माध्यम से अदालत में मामले को उठा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल, ये सारे आंसर्स आपके हो गए हैं इसमें। और एक बार आप इसको, जो मैं आंसर्स बोलती हूँ ना, तो आप क्या किया करो कि आप उसी टाइम लिख लिया करो, है ना, तो आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जो बीच बीच में मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बताती रहती हूँ उसे भी आप अच्छे से ध्यान रखा करो। जो एग्जांपल्स में बताती हूँ उसे ध्यान रखोगे ना, तो फिर आंसर में अगर मान लो नहीं भी याद है तो जल्दी जल्दी आपको याद आ जाएगा कि मैंने क्या बताया था आपको। ओके, थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।